अनर्थ चार प्रकार के हैं। सबसे पहला स्वरूप भ्रम, स्वरूप भ्रम भी चार प्रकार के हैं। भगवान के संबंध में भ्रम, भगवान के स्वरूप के संबंध में भ्रम। कैसे भ्रम? गणेश जी भगवान है, शंकर जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, काली दुर्गा भगवान है, नहीं ब्रह्म हूं, ये सबसे अधिक ब्रह्म है। सभी लोग जितने हैं सभी ब्रह्म है, ये सबसे ब्रह्म है। कृष्ण स्वयं जो मुरली भजन करने वाले अत्यंत सुंदर किशोर है, नंद नंदन है, राधा कांत है, यही कृष्ण का स्वरूप है। वे सच्चिदानंद घन है, कभी जन्म लेते और मरते नहीं, और वो सर्वशक्तिमान है। जितनी प्रकार की पोटेंसी है, सब शक्तियों की पोटेंसी उन्हें परिपूर्ण रूप से, इसलिए वो सच्चित आनंद आनंद कंद भगवान कहलाते हैं। सर्व अंतर्जानी है, सर्वव्यापी है, अघटन घटन पतियती, जो अघटन माने जो कभी नहीं होने वाला है उसको भी घटन करा देते हैं, ऐसे शक्ति और सामर्थ्य वाले हुए हैं। सब कुछ वो करते हैं। उन्हीं से जीव, दो प्रकार के बद्ध जीव और मुक्त जीव, भक्ति के द्वारा ये जीव भगवान को प्राप्त होते हैं। भगवान का विमुख होने से वो संसार में आ जाते हैं। जितने भी जीव जड़ और चेतन है, सब भगवान के साथ में रिलेटेड है किसी न किसी रूप में, किसी को अचिंत भेदाभेद कहते हैं। प्रेम की प्राप्ति ही भक्ति का एकमात्र उद्देश्य है। भक्ति के द्वारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है इसको साधन, ये होने से कृष्ण के प्रति, ये कृष्ण का स्वरूप है, जीव का स्वरूप। हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, हम भी सच्चिदानंद है। माया के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के शरीरों के द्वारा मैं ढका हुआ हूं। अभी हमने जो अपना नहीं है उसको हमने अपना मान रखा है, और जो अपना है उसको हमने आंखों से ओझल रखा है, उसी के साथ में हम कोई भी संबंध नहीं। ये दो हुआ ना, परस्वरूप जीव का स्वरूप, माया का स्वरूप, ये जितनी ये सब चीजें हैं माया का स्वरूप। और भक्ति का स्वरूप क्या है इसके संबंध में नहीं जानते। ये चार प्रकार के भ्रम हैं। गुरु अपने वचनों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा उनको दूर करने का प्रयास करता है, ये दीक्षा प्रारंभ है, समझ रहे हैं। इसके बाद में होता है स्वरूप भ्रम, असत तृष्णाएं भी चार प्रकार की है। असत तृष्णा माने, तृष्णा माने होती है भूख, लालसा, अभिलाषा, इसका माने होता है तृष्णा। असत तृष्णा, असत जो सत्य नहीं है। कैसे? अभी हम जो कुछ करते हैं, प्रयास चेष्टाएं जो करते हैं, या जिसकी हमें भूख लगी है, ये सब मैटेरियल चीजों के लिए। भगवान के लिए, भक्ति के लिए हमें भूख नहीं, ये असत तृष्णा है। जितनी प्रकार की लालसाएं, ये लालसाएं होती हैं प्राकृतिक, जो इस जगत में जो हम देखते हैं इंद्रियों के द्वारा, जिनका हम रियलाइज करते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीवा से बोलते हैं, और त्वचा से स्पर्श करते हैं, ये मैटेरियल है। परोक्ष, परोक्ष माने जिसको देखते नहीं है किंतु है, वो स्वर्ग इत्यादि भोग की कामनाएं। अपरोक्ष, मुक्ति इत्यादि की इच्छाएं इत्यादि, ये सब पांच चार प्रकार के असत तृष्णाएं। ये तृष्णाएं प्रबल होने पर हृदय में दुर्बलता आ जाती है परमार्थ के प्रति। यदि मैं भगवान का भजन करूं और अच्छी तरह से ही सब समय लगा दूं तो हमारा भोजन कैसे चलेगा? किसी का पैसा हमारे पास में जमा है, इसको ले लेने में हर्ज क्या है? कहते हैं ये सब पीछे देना पड़ेगा। कौन जानता है ये देना पड़ेगा कि नहीं? अभी तो लेकर के खा ले, क्योंकि हृदय दुर्बल गया, परमार्थ तो गया, इसलिए हृदय दुर्बल है। चोरी करना, कपटता, धूर्तता, ये सब उस दुर्बलता के वजह से ही अपराध होते हैं। अपराध भी चार प्रकार के हैं। साधारणों के प्रति अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध, भक्ति के प्रति अपराध, भगवान के प्रति अपराध, इस प्रकार से सभी जितने भी अनर्थ हैं चारों प्रकार, ये सब जो गुरु जिस प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे दूर करता है उसको कहते हैं छा, माने छालन करना, दूर करना, धो देना। एक तो दिव्य ज्ञान दिया, अब दूसरा ये प्रक्रिया जो है गुरु तो एक दिन में दिया किंतु होता नहीं एक दिन में। ये दीक्षा का क्रम एक कोर्स है लंबा, जितना जल्दी जो कोई इसको पूरा कर ले, किसी का 10,000 जन्म लग सकता है, किसी का कुछ भी महीने प्रयास से हो जाएगा। सुन करके जितनी गंभीरता से लेकर के साधन भजन जितनी अच्छी तरह से करेगा उसका जल्दी से हो जाएगा दीक्षा। और नहीं तो ये संबंध ज्ञान होने में और अनर्थ दोनों में दूर होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यदि अच्छी तरह से श्रवण कराने वाला कोई हो और सुनने वाला भी कोई हो और जिनकी वाणी में हृदय में शक्ति है, वो लोग जल्दी से इस दीक्षा को लेकर के संबंध ज्ञान उदित करा देते हैं और उनको इस प्रक्रिया का नाम दीक्षा है। अब गुरु अपने शक्ति और सामर्थ्य से कोई दूसरे के यहाँ ले जाकर के करेगा, कोई सुनाते 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 बहुत दिन लग जाएगा, और जिसमें साधन भजन का बल है और कुछ ऐसी अनुभूति है वो बहुत जल्दी से ही वो कुछ पूरा करा करके उसके अंदर में दिव्य ज्ञान भी दे देता है और पापों को दूर कर करके जल्दी से जल्दी निष्ठा पैदा कर देगा। फिर वो निष्ठा से धीरे धीरे रुचि हो जाएगी बहुत जल्दी। इस तरह से एक जन्म के अंतर्गत में ही हो सकता है कि भाव तक ये है दीक्षा।
प्रभुपाद जी ने कई जगह ऐसा बोला था कि गुरु शिष्य के पापों के रिएक्शन को ग्रहण कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं।
उनका तात्पर्य ये नहीं, ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप भोग करते हैं। आज जैसे भी दूषित पदार्थ हैं, जितने भी मैले हैं, गंदे हैं, जो कुछ है, एक कपड़े में तरह तरह का मैल लगा है, आग उस मैल को ले लेते हैं ना, उसमें डालने से ही आग जला करके उनको खत्म कर देता है, लेता है कुछ जला दिया। तो ऐसे गुरु में शक्ति है जो उन पापों को वो दूर करते। किंतु हाँ एक बात है, यदि गुरु ऐसा नहीं हुआ आग जैसा और साधन भजन का बल नहीं है, केवल शिष्यों का अर्थ ही ग्रहण करते हैं और उनकी पूजा लेते हैं और उनका उपकार नहीं कर पाते, तो वो गुरु और चेला दोनों नरक में जाएंगे यदि उसको उद्धार नहीं कर। इसलिए गुरु शक्तिशाली होना चाहिए और जैसे तैसे चीजों को कोई ग्रहण न करे। गुरु को संसार के प्रति वैराग्ययुक्त होगा ना, अनासक्त होगा, उसको संसारिक चीजों से मतलब क्या है। इसलिए प्रतिष्ठा इत्यादि से भी, अर्थ से भी सबसे दूर रहे और यदि कुछ होगी भगवान के सेवा में अपने गुरु जी को सब समर्पण कर दे, जो समर्थ तब तो वो बच जाए और नहीं तो वो दोनों।
जैसे हमने देखा कि कई लोगों ने दीक्षा ली, उनके गुरु गिर गए, उनका फिर कैसे उद्धार या कैसे भविष्य।
वो तो जो गिर गए ना अभी सचमुच में गुरु नहीं है। गुरु कभी गिरेगा तो गुरु क्या हुआ।
ठीक, तो उन्होंने जो दीक्षा दी उनके संग जो दीक्षा प्रक्रिया है उसको किस हद तक लिया जा सकता है।
उसको इस हद में लीजिए यदि वो शुद्ध मंत्र है तो वो तो भगवान के तरफ से आ रहा है, वो अपना काम करेगा। किंतु गुरु के तरफ से जो दिया हुआ जो भाव था, जो काम करता वो काम नहीं करेगा। जो गुरु स्वयं ही सदाचार में संपन्न नहीं है, जो विषय भोगों में पड़े हुए हैं और दूसरों को केवल अर्थ इत्यादि की लालसा से ही जैसे कुल गुरु इत्यादि हैं देते हैं, कोई कल्याण की भावना तक नहीं है, कल्याण जानते नहीं है, खुद ही भजन नहीं करते, तो वो क्या करेंगे सर उनके द्वारा। कोई ऐसे कौलिक गुरु को छोड़ करके शुद्ध गुरु को आना चाहिए, नहीं तो काम नहीं, पारमार्थिक काम नहीं होगा। पारमार्थिक काम उसी समय में होगा जब गुरु उसी प्रकार से अंततः भजनशील तो हों, मुक्त न हो कोई बात नहीं, अंततः भजन करने में, साधन करने में, आचरण में परिपक्व।
जिस गुरु को अपना संबंध ज्ञान अगर प्रकट नहीं है वो क्या शिष्य को दीक्षा दे सकता है।
उचित तो नहीं, क्योंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए वो दोनों जा रहे हैं। गुरु भी वैसे जाते हैं और चेला भी वैसे ही मरते हैं। अंततः तो कुछ रियलाइजेशन होना चाहिए। हमारे भक्ति शास्त्र के जितने उनको अध्ययन किया हुआ समझने वाला है, अंततः तो उसको परमार्थ के लिए एक लोभ और उद्देश्य थी एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अपने लाइफ का
क्लियर होने के लिए भक्ति क्लियर है वो दे सकता है,
चाहे तो वो एक भाव को भी देगा। पांचों में से कोई एक भाव उनके अंदर में हरि कथा के माध्यम से भागवत की कथाओं को सुना करके जैसे तैसे अपने अंदर में जो भाव है वो शिष्य के हृदय में भर देगा।
एक दो जगह प्रभुपाद जी ने ऐसा जिक्र किया था कि परम गुरु भक्ति सरस्वती कहते थे कि ज्यादा शिष्य नहीं करनी चाहिए उससे,
तो भक्त के सामने चिंतित होता
है उन्हीं को बोल करके उन्होंने बताया कि उससे क्या कहते हैं बुरा असर पड़ता है।
क्या बुरा असर पड़ता है? तरह तरह के टाइप के शिष्य हों, अनर्थग्रस्त हों, गुरु को अपने विचार के अनुसार चलने के लिए दबाव डालेंगे, बाध्य करेंगे, गुरु अपनी इच्छा से नहीं चल सकेगा, दिन रात उनकी समस्याएं मिटाने में ही अपने समय को लगा दिया, गुरु जी आज हमसे इनसे झगड़ा हुआ, गुरु जी आज ऐसे हो गया, आज ये कोई बात ही नहीं सुनते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मत चलाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, हजारों तरह की समस्याएं उनको सुनाते रहेंगे और उनका भजन का समय गया, वो अपने भजन नहीं करेंगे, बस ऐसे ही करते हैं। कोई कहा जी महाराज जी ऐसा करना है, अब जन्माष्टमी ऐसा करेंगे जो आज आज तक दिल्ली शहर में नहीं हुआ हो। अच्छा तो इसके लिए क्या करना है? 55 लाख रुपए जमा करने हैं, संग्रह करने हैं, और उसके द्वारा दिल्ली को हम दिखला देंगे जो जन्माष्टमी की शोकर, तो इसमें भक्ति कहाँ रही? 55 लाख रुपए आ गए, 55 का 60 रुपए और खूब चमक दमक कर दिया, चारों तरफ में लाउड स्पीकर लगा दिए, तो भक्ति कहाँ रही? इसलिए गंदे शिष्यों के बहुत होने पर भक्ति कहा।
जैसे हम ये समझते हैं कि गुरु को रोग लगता है, बीमारी हो जाती है, कभी शिष्य के
गुरु को न तो कभी रोग होता है न बीमारी होती है, शरीर का जो धर्म है वो हो सकता है और जो भजनशील हैं उनको वो भी नहीं, यदि हो भी भगवान उनको दीनता लाने के लिए ऐसा कर देते हैं। भक्ति का पहला लक्षण ये है क्लेश, अपनी समस्त प्रकार के क्लेश दूर हो जाते हैं, इसलिए शिष्यों का क्लेश ले लेंगे, गुरु दीनता से ऐसा कर देता है, किंतु ऐसा जो शिष्यों का शिष्य ले ले उसको जला करके खत्म नहीं कर दिया तो वो गुरु गुरु क्या है? एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप ना, प्रेम कारण भक्ति करण प्रकार, एक कृष्ण नाम यदि हृदय से लिया जाए समस्त जन्म जन्मांतरों को पापों को नाश कर देता है, तो गुरु जी के लेने का प्रश्न किया हुआ कहा कृष्ण नाम करो, तो किसी ने कृष्ण प्रेम लिया, महाप्रभु जी ने कहा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के समस्त पाप लिया क्या, नाश कर दिया। दिनता बस सब कोई गुरु कह देता है वो दूसरी बात।
तो ये अभी जैसे आपने समझाया हमको, गुरु हरि नाम की दीक्षा देते हैं और बिना दीक्षा दिए कोई हरि नाम करता है, पर गुरु के देने से गुरु का जो शक्ति है वो उसमें आ जाती है,
भजन पदा प्रभाव इत्यादि सब उसमें आ करके जल्दी से प्रक्रिया है। तो अब उसको जो बिना गुरु के दीक्षा के हरि नाम करता है, अब वो करते 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 भगवान कृपा करके साधु संग देंगे, कुछ श्रद्धा देंगे, फिर साधु संग दे करके गुरु जी को मिला करके फिर दीक्षा हो। दीक्षा उसको नहीं कहते हैं ये कान में मंत्र दे दिया जाओ तुम्हारी दीक्षा। एक महीने के बाद में पूछा जैसे वो क्या मंत्र दिया था, तो याद तो है नहीं। ये दीक्षा नहीं है, आजकल ऐसा ही है,
ऐसे ही होगा,
यही है तुम्हारी दीक्षा बेटा हो गई, वो कौन सा मंत्र था याद तो मुझे नहीं, या उल्टा पुल्टा कर ओम क्लीन फिर कर दिया गोविंदाय स्वाहा, ये कृष्ण कान गतगा तो वो तो मुझे पता नहीं, तो फिर क्या हुआ? ये सब दीक्षा है, दीक्षा हृदय की वो चीज है जिसको हृदय से ग्रहण करके और हृदय से निर्मल होकर के प्रभु का संबंध ज्ञान दिया था, इसका नाम है, और साधन भजन में रुचि मिलेगी इसका नाम है दीक्षा, और वह प्रक्रिया प्रेम प्राप्ति होने तक चलती रहती है, वहां पर कोर्स समाप्त होता है।
इसमें दो तीन बड़े टेक्निकल टाइप के प्रश्न है महाराज, वो ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा जो गुरु देता है मंत्र वो है, या
इसको दीक्षा
बाल मंत्र जो ये दिया जाता है काम गाती वगैरह इसको दीक्षा कहा जाता है, इन्हें आप सिद्ध मंत्र जो कह रहे हैं कि मंत्र का अपना प्रताप है वो महामंत्र है या ये वाले मंत्र है?
महामंत्र के भी दीक्षा हो सकती है, एक मंत्र के द्वारा भी दीक्षा हो जाती है। जैसे हम लोगों का जो गोपाल मंत्र है ना, कृष्ण मंत्र, ये मंत्र है 18 अक्षरों का, अष्ट दस साक्षर, पहले इसमें दस अक्षरों की ही दीक्षा होती थी। पहले चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी ने उनको, ईश्वर पुरी जी ने दस अक्षर, कौन सा दस है? गोपी जान बल्लभ भाय, ये दस वसंत की दीक्षा, और कोई चीज की जरूरत नहीं। हमारे गुरु वर्गों ने, आचार्य वर्ग के उन्होंने देखा इससे काम पूरा नहीं होता, बहुत प्रक्रिया में देरी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने महामंत्र पहले दिया। भारी शक्तिशाली है भगवान का स्वरूप, और इसको शुद्ध रूप से करने के लिए वो दीक्षा के जितने भी मंत्र हैं गुरु मंत्र से लेकर के और पंचतत्व महामंत्र जो कुछ है सब कुछ, इसको आजकल हम लोगों ने इसको दीक्षा कहा रखा है। अब गुरु लोगों से ऐसा पूछे तो कोई गुरु ही उत्तर नहीं देगा, तो वो आचार्य जो बने हैं ना वही इसका उत्तर नहीं दे सकते, किंतु हाँ ठीक है यदि हरिनाम कर, इसलिए हरिनाम करना भी हो सकता है दीक्षा, नहीं तो हम लोग इसको हरिनाम ज्ञान करते और दूसरे वाले को दीक्षा, किंतु हरिनाम श्रेष्ठ है उससे भी, किंतु इससे दिव्य ज्ञान इत्यादि होता है और पाप दूर होता है, इसलिए हमारे लिए पहले जो कि गौण है, गौण माने मुख्य नहीं है, वही हमारे लिए मुख्य हो गया और नाम हो गया गौण। कुछ दिनों के बाद में जब मुक्त होंगे तो ये मंत्र सब इसी जगह में रह जाएंगे शरीर के साथ में, केवल वो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वही इसको ले जाएगा बैकुंठ और गोलोक वृंदावन में ले जाएगा।
ये मंत्र जो है ये हमारे को हमारा शुद्धिकरण करने के लिए,
शुद्धिकरण और संबंध ज्ञान लगा,
मन ज्ञान जोड़ने के लिए। ज्ञान में एक जगह आया था कि थोड़ा मंत्र के साथ में कि जो सही मायने में मंत्र है तो वो तो वर्णात्मक नहीं है, वो प्रेमात्मक ही है, और इसका मतलब है कि उस समय जो मंत्र का जाप है वो शब्दों के अधीन नहीं है, वो कोई और ही तत्व
वो ऊपर से आता है ना, अवतरण करता है वो भगवान स्वयं, तब वो मंत्र ठीक है। अभी हम अपने जीवा के प्रयास से मेंटल ये सब करते हैं, और जब अपने आप हृदय में उतरने लगे तब वो
आपको बहुत तंग कर रहे हैं लेकिन अच्छा अब लाइट जला दो। कुछ ये शास्त्र शब्द हैं, गुरु से शिष्य का संबंध शाश्वत है, सनातन है, और जो हम गुरु अस्तक गाते हैं उसमें श्री राधिका माधव और पारा इससे जैसा है कि वो गुरु खासकर आप परंपरा में जो हमें सिखाते हैं हमारे राधा जी की कोई मंजरी है और हम भी उसी ही
शुद्ध गुरु जी का अखंड गुरु का।
तो अभी जैसे हम यहाँ दीक्षा लेते हैं, अब पीछे भक्त नहीं बना और गुरु शरीर छोड़ के चले गए तो वो संबंध तो शाश्वत कैसे माना जाएगा?
क्या
शिष्य ने भक्ति तो नहीं की, पूरी प्रकाशता पे नहीं पहुंचा और उसने शरीर त्याग दिया,
शिष्य ने
और गुरु भी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, तो ऐसा शिष्य तो फिर जन्म लेगा और अपनी भक्ति यहाँ से छोड़िए फिर करेगा और उसको कोई गुरु फिर भगवान भेजेंगे, जो पहले गुरु मिले वो उनसे उसका जो शाश्वत संबंध है वो तो नहीं माना जाएगा।
जैसे आप यहाँ पर सांस ले रहे हैं भारतवर्ष में, ये सांस किससे, हवा से ले रहे हैं? अच्छे जब आप इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ पर सांस लेंगे कि नहीं? तो वो कौन हवा है? यदि एक हवा ही ऐसी हो सकती है सब जगह एक ही हवा है, हवा दो है कि तीन है,
हवा एक
यहाँ की हवा वहाँ की हवा में अंतर है कि नहीं?
हवा एक ही है।
तो उसी तरह से गुरु एक है, अखंड, उसका अखंड प्रवाह चल रहा है, गुरु का कहीं अभाव नहीं है। अब इस शिष्य के यहाँ समतल तक आने की बात, वो समतल में आया कि नहीं, कि उस हवा के पार, गुरु की कृपा के पार। वो गुरु आप जन्म जन्मांतर हजार जन्म लेंगे, और जब इस सचमुच में आपने अनकंडीशनली उनको सरेंडर कर दिया है, तो आप तो बिना मुक्त किए हुए रहेंगे, चाहे हजार उनको जन्म लेना पड़ेगा। और वहां पर वो नित्य सिद्ध में पहुंच गए और वहां पर सेवा कर रहे हैं कृष्ण की, और एक शरीर धारण करके आपके पास आ करके आपका उद्धार का कार्य कर रहे हैं। आप ही का नहीं, हजारों शिष्यों का, कहीं यहाँ कहीं यूरोप में, कहीं उस ब्रह्मांड में, कहीं उस पर। सिद्ध हो जाने पर ऐसा होता है जैसे भगवान के बहुत से लाजू हो जाते हैं, वो भी कहना चाहता है। जितनी जितनी बुद्धि चलाएंगे ना, उससे जो ऊपर उनके सत्य हैं। इसलिए बस इतना ही सुन समझ लीजिए, जिसे गुरु नित्य हैं और जब सफल में तक उसका उद्धार करते हैं, गुरु का कहीं अभाव नहीं।
अब थोड़ा से हटके प्रश्न है, गुरु से हटके प्रश्न है। तुम्हें आप बता रहे थे कि जितनी भी प्रकट लीला है उस लीला में भगवान का यहाँ जन्म है, लेकिन अप्रकट लीला में भाव है ये मेरे पुत्र हैं। तो अप्रकट लीला में
अभी ऐसा समझिए, हम लोगों की बुद्धि जो है अभी मॉर्टल है, और प्राकृत चीज को हम नहीं समझ सकते। अभी भजन के प्रभाव से समझ लीजिए, उसको सुन लीजिए, किंतु कोई धारणा बनाइए। अभी धारणा बनाएंगे तो वो प्राकृत धारणा हो जाएगी। अभी जिस चीज को आप जन्म कह रहे हैं, पारमार्थिक भाषा में उसको जन्म ही नहीं कहते। जिस सेंस में आप शरीर का व्यवहार करते हैं, जन्म का, मरण का व्यवहार करते हैं, पारमार्थिक रूप में उस तरह का कोई है ही नहीं। इसलिए आपको मैं कहूं कि कृष्ण कभी भी वृंदावन से मथुरा नहीं गए या वहां नहीं गए द्वारका। आपकी धारणा भी ठीक से नहीं गई। तो जैसे हम यहाँ से पैदल वहाँ से जाते हैं या किसी चीज से जाते हैं, तो किसी ऐसे ही नहीं होंगे,
हम ऐसे ही तुलना करते हैं,
आप ऐसे ही उसको खा। इसलिए गुरु आपके स्टैंडर्ड के अनुसार में वैसे ही बातें कहता है। मुक्त महापुरुषों की तो परिभाषा आप समझ नहीं सकेंगे, उनकी बातें तो समझ में नहीं आए, इसलिए नीचे उतर करके मध्यम अधिकारी बन करके आप जिस चीज को पकड़ सकते हैं ऐसी ही चीजों को वो बतला। किंतु कुछ दिन में भजन करने के बाद नहीं, अरे ये तो ठीक नहीं, अरे गुरु जी ठीक नहीं, गुरु जी ठीक बतलाए, और उसका सामंजस्य भी आपको हो जाएगा। नहीं, उन्होंने उसी समय ये बतलाया था, किंतु हमारे दिमाग में आज आ रहे हैं ये ऐसे ऐसे। इसलिए अभी उसके संबंध में जो हम प्रश्न करते हैं वो प्रश्न ही
अभी गलत है,
गलत
है। अपनी
हम अपनी योग्यता अनुसार में धारणा के अनुसार में ऐसा है, इसलिए वहां का जन्म यहाँ पर ऐसा जन्म वहां होता है कि नहीं कहने से भी आदमी नहीं सकते। तब ये समझ ले कि वहां पर नित्य लीलाएं सभी हैं। किसी ने कह दिया कि वहां पर अभिमान, अब वो अभिमान कैसा है? ऐसा अभिमान, ये मेरा बेटा है, ये अभिमान है। किसी दूसरे के लड़के को हमने कह दिया ये मेरा पिता है, और अपने लड़के को कहा है, इसमें कुछ भेद होगा क्या होगा? इसलिए ऐसी सब धारणाएं वहां पर ऐसी हैं जो समता तो दोनों में है, एक ही समान लगती, किंतु है नहीं। इस जगत में ही रोल्ड गोल्ड और असल सोना एक नहीं, किंतु जो रोल्ड गोल्ड है वो अधिक चमकता है, अधिक आकर्षण करता है, बल्कि असल सोना मैला हो सकता है, हम उसको छोड़ करके उसको ले लें, ऐसे ही है। इसलिए वहां का भाव अभी सुन लीजिए, जो वहां पर सब लीलाएं हैं, वहां पर जन्म लीला भी है, और जन्म लीला जिस रूप में हम समझते हैं उस रूप में रहकर के अभिमान के रूप में नित्य वर्तमान है। कृष्ण हमारे प्रियतम, कृष्ण हमारे पुत्र हैं, यही भाव वहां पर करते हैं। यदि कोई वहां पर देखना चाहता है तो अभिमान ही प्रकट होकर तो उसको जन्म की लीला दिखला देगा, समझ रहे हैं। हमारा अभिमान जो है अभी प्रकट होकर के रूप नहीं ले सकते, किंतु उन लोगों का अभिमान जो है जैसे कोई मंत्र से ऐसे किया, ऐसे देखा और नोटों की बहुत खा रहा थे, मिठाई सब आ गया, जो चाहे वही दिखला दिया। उनका मंत्र ऐसा कर सकता है, हम अभी नहीं करेगा आपका, क्योंकि मंत्र में कुछ नहीं। तो वहां का अभिमान कभी कभी यदि कोई देखना चाहेगा तो दिखा देंगे उस लीला को भी, और जो होगा नहीं आता
सब कुछ हो सकता है। और जितने जितने अलग अलग भाव के भक्त हैं उन सबके उन भावों से संबंधित लीलाएं नित्य वहां चल रही है। ये बात तो बहुत अच्छी तरह से एक बार आपने समझा दी थी कि गोपियों के संग वो कुमार अवस्था में सदा वहाँ नित्य है, पर वही कृष्ण जो है वो यशोदा मैया के संग वो जैसा जैसा भाव है उसी तरह की लीला में रूप मिल जाता है।
कभी भी समझाया कभी आप नहीं समझे, किंतु पहले अपेक्षा अब कुछ समझे, कुछ दिनों के बाद में अब कहूंगा तो और समझ लेंगे, कुछ दिनों के बाद में जब और समझाएंगे तो और अच्छी तरह से समझेंगे, जब कुछ भावभीत हो जाएगा तो जो देखेंगे इस पक्ष से देखेंगे।
अच्छा अब
देखो ये सब जो चल रही है ना, ये दीक्षा की प्रक्रिया चल रही है, इसी को शिक्षा भी कहते हैं दीक्षा।
अब यही मैं पूछने जा रहा था कि ऐसे रसिक वैष्णव के संग बैठ के हम संगत करते जाते हैं और ज्ञान ग्रहण करते जाते हैं, अनर्थ अपने आप निर्वृत्त हो रहे हैं, क्योंकि जब भगवत कथा सुनेंगे तो और कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं ऑटोमेटिकली, और शिक्षा मिल रही है, तो ये एक किस्म से दीक्षा ही हो गई।
यही तो दीक्षा, तो दीक्षा हो रही है, जो गुरु इस काम को नहीं कर सकता वो दीक्षा गुरु नहीं दे सकता।
तो जितने भी अब जिन शिक्षा गुरुओं के संग हम इस तरह से अंतरंग होकर अपने अनर्थों को निवृत्त करते हुए जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक किस्म से वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से।
एक बात आप कर लें, कान में गुरु जी ने एक मंत्र दे दिया, दीक्षा का जो मंत्र होता है ब्रह्म गायत्री से लेकर के और सभी मंत्र दिया, इस बात उस गुरु से भेजते हैं। अब दूसरा एक व्यक्ति है, कैसे ये उनके भाव क्या है, मंत्र है कैसे, और धीरे धीरे शिक्षा देते 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 आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करा करके निष्ठा रुचि आसक्ति तक पैदा कर दिया। यहाँ तक कि रागानुगा जो भक्ति है, एक वैदिक भक्ति एक रागानुगा, रागानुगा किसको कहते हैं, ब्रज के प्रति भाव के प्रति लोभ उत्पन्न होने पर जो साधन भजन करता है उसको कहते हैं रागानुगा, राग के अनुगत होकर। जिसको ऐसा लोभ उत्पन्न नहीं हुआ है वो शास्त्र के अध्ययन से या उसके भाव से वो वही भक्ति करता है ना, मन लिया थी तो गुरु अप्रकट हुआ या उनसे कोई अब संबंध नहीं रहा, बहुत दूर रहते हैं, और जिनके निकट हम हैं उन्होंने ब्रज की कथाओं को कहते 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 हमारे अंदर में एक विशेष गोपियों के प्रति भाव उत्पन्न कर दिया, मैं भी गोपियों की तरफ में उनकी दासी होकर के मैं राधा कृष्ण की सेवा का हमारा जीवन के साथ, अब मैं इस भाव को नहीं छोड़ती, चाहे मर जाऊंगी या मर जाऊंगा कोटि कोटि जन्म लग जाए, ये भाव हम नहीं छोड़े। इस भाव को जो उत्पन्न करा दिया वो श्रेष्ठ है कि कान में केवल मंत्र दे दिया वो श्रेष्ठ है, बतलाई
भाव पैदा करने वाला
इस तरह से कहीं पर शिक्षा गुरु ही बड़ा हो जाता है, वहां पर शिक्षा दीक्षा गुरु का कोई भेद नहीं है,
दिव्य धाम में तो इस चीज का कोई
यही नहीं। यही गुरु गुरु है, यथार्थ गुरु यही है। यदि वो दीक्षा देने वाले गुरु इन सब चीजों को करते हैं तो वही शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु गुरु, नहीं तो जो इन भावों को पारमार्थिक भावों को हमारे हृदय में काम से तो सुना जाता है ये तो मंत्र का काम करता है, जिसको जिसका नाम है शिक्षा, तो इसको जो भर दिया और पारमार्थिक लोग उत्पन्न करा दिया, लोग उत्पन्न करने के बाद में हमारा क्या कर्तव्य है इसके संबंध में भी वो सब साधन भजन कैसे करेंगे जिसके संबंध में भी बताया, ये सब लोग शिक्षा दे हमारे गुरु हैं। आपने कृष्ण को या चैतन्य महाप्रभु को अपना शिक्षा गुरु बना दिया। चैतन्य चैतन्य शिक्षादि में उनके उपदेश है महाप्रभु जी के, अच्छे कृष्ण के भी उपदेश हैं जो बिल्लो मंगल को उन्होंने सुनाया कृष्ण करणामृत इत्यादि। और कृष्ण को अपना या चैतन्य महाप्रभु को या स्वरूप दामोदर को, राय रामानंद को या रूप गोस्वामी को अपना गुरु बनाया और हमारे गुरु जी हैं। अब दोनों में आप किसको प्रेफरेंस देंगे, कौन बड़े हैं?
ये तो बड़े जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता चला, जिनसे राय रामानंद वगैरह ये तो आचार्य हैं, इनके प्रति तो
बड़े हैं ना, उनके भी उपास्य हैं, हमारे गुरु जी के भी उपास्य हैं, किंतु चूंकि उन्होंने उनसे संबंध करा दिया है जो गुरु ये भी नहीं दे सका, और हम रूप गोस्वामी इत्यादि का आचरण देते हैं हम सब, तो गुरु शब्द बाटते ही नहीं है, केवल नाम के लिए गुरु। गुरु तो वह ना हमारे हृदय को कृष्ण के समीप लेकर के रख दे, इसलिए ये दीक्षा देने वाले गुरु उनकी प्रधान।
खरी आपने कहा जब तक रागानुगा भक्ति में हम नहीं आ रहे तो वैदिक भक्ति से उत्तरोत्तर उन्नति करनी है, तो रागानुगा भक्ति का मतलब ब्रज के परिकर जिस तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं उस तरह की भक्ति का हृदय में लोभ पैदा करके उसके अनुगत होते हैं।
रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे बने, सनातन गोस्वामी जी भजन करते परिक्रमा दे रहे हैं, कृष्ण भावना कर रहे हैं, राधा जी की सेवा की भावना कर रहे हैं, के किरणों से पाप से गिर गए, कृष्ण स्वयं आ गए और अपने दुपट्टे को उन्होंने छाया कर दी और बलदेव जी अपने दुपट्टे से और कृष्ण उसके भार बिंद पर ललाट पर अंग पर अपने सुकोमल मृदु थोड़ी देर के बाद में देखो अपने कब पा रहे हैं ऐसा मत, अब इतनी जोर से परिक्रमा मत, हम तुमको एक शिला दे देते हैं उस पर अपना चरण चिन्ह और बंसी का चिन्ह रख देते जो तुम इसी की परिक्रमा। अब सनातन गोस्वामी जी किस भाव से करते थे भजन, उनको कहते हैं लवंग मंजरी, लवंग मंजरी की भावना से भीतर भीतर करते थे और ऊपर से ये करते थे। जब आप उनके साधन और सिद्ध शरीर की भावना देकर कैसे ये जागतिक साधन करते थे और भीतर से कैसे कृष्ण के प्रति राधा जी के प्रति मंजरी रूप में उनकी सेवा करते थे, इन दोनों के प्रति लोभ हो जाएगा तो उनकी भावनाओं को आप सबसे भजन करना। अच्छा ये बतलाएगा कौन, हमारे गुरु जी यदि नहीं जानते हैं नहीं बतलाएंगे तो हम जाएंगे कहां, इसलिए जो बतलाने वाले हैं वही हमारे गुरु हैं, जिन्होंने बतलाया हमको वहां तक ले गए यही हमारे व्यवहार थे।
तो साधन के प्रति भी लोग और उनके अंतरंग साधन के प्रति लोग ना हो सारी
भावनाओं के प्रति लोग, ये राजा भजन। और जब तक ये नहीं है तब तक भजी भक्ति नहीं होता,
तो इसका अर्थ जब तक हमारे को संबंध का ज्ञान वास्तविक संबंध का ज्ञान प्रकट नहीं होता है इसमें
नहीं,
तब तक सही मायने में तो हम रागानुगा भक्ति नहीं कर सकते।
रागानुगा तो है ही नहीं है, भजी भी भक्ति है कि भजी भक्ति कब होगा, इसके तीन लक्षण है भजी भक्ति आपकी हो रही है, कोई भी प्रकार की कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कामना ना, कोई भी संसारिक और आर्मात्मिक कोई भी अपने सुख के लिए कामना है और ज्ञान और कर्म के द्वारा वह स्थापित न हो और अनुकूल रूप में निरंतर गुरु वैष्णव के गुरु जी के अनुगत्य में अपने तन मन वचन और भाव से सब समय कृष्ण की सेवा के लिए जो प्रयास के साथ किया है उसका नाम भक्ति है, सेवा भक्ति या उत्तमा भक्ति। तो यदि आप में अंदर में भजन कर रहे हैं किंतु तरह तरह की ये संसारी का अभिलाषा लगी हुई है और भजन करके प्रभु से कहते प्रभु हमारा ये कर हमको कुछ अर्थ होगा, मेरी प्रतिष्ठा ये संसार में हो जाए, तरह तरह की कितनी कामनाएं है, तो आपकी वही भक्ति भी अभिशुद्ध नहीं है, अभी चट्टान है और उसी को कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति अथवा संग सिद्धा स्वरूप भक्ति होगी। स्वरूप सिद्धा भक्ति होगी जब ये सब कुछ नहीं रहेगा और वैष्णव के अनुगत में तन मन वचन और भावना ये सब से मिल करके जब चेष्टा करने लगे तब वो सिद्ध भक्ति होगी। सब श्रवण कृष्ण अभी बैठी है जब ब्रजवासियों के भाव के प्रति लोभ होकर के जब होगा तो ऊपर से देखने में वैधी शक्ति रहेगी किंतु वही
भाव में लागन होगा।
हाँ वो तो थी मैंने उनके उस सेवा के द्वारा वशीभूत नहीं होंगे और ब्रज का भाव कभी नहीं मिलेगा। ब्रज में कृष्ण जो है उनकी सेवा नहीं मिलेगी। यदि आप नाम के कीर्तन करते हैं श्रवण के कीर्तन करते हैं एकांतिक चित्त लगा करते हैं तो वैकुंठ की भक्ति का यदि आप कृष्ण के प्रति कृष्ण को पाना चाहते हैं राधा जी को पाना चाहते हैं ब्रज की सेवा पाना चाहते हैं किंतु रुक्मिणी जी के प्रति भी अभी भावना है राम के प्रति भी भावना है हनुमान जी की जैसी भक्ति की भी भावना है कभी ब्रज की भी हो जाती है तो ये संकुला कहलाती है। इससे अधिक से अधिक आपको द्वारका तक के लिए महिषियों की सेविका बनकर के भाग जाए या दास भक्ति इत्यादि हो सकते हैं। केवल उसको कहते हैं कि एक लोग हो सत्य वात्सल्य और भगवत हमको ये हम इनमें से एक को लेंगे इसे इधर उधर नहीं तब वो संकुला होती है
केवल
तब वो राधा निभा की तरह
जो हम लोग गुरु आज्ञा से ये प्रचार का कार्य कर रहे हैं इसे वैधी भक्ति माना जाएगा।
वैधी भक्ति में भी ये माना जाएगा आरोप सिद्ध है तो सब इतना कहां कहीं भक्ति का अंग है किसी को मुक्त दृष्टि रूप है उत्सव करते हैं खिचड़ी बांटते हैं या कोई प्रसाद बांटते हैं छोटे प्रकार के भक्ति में से यह है किंतु थोड़ा सा भगवान के साथ में संबंध बना लेते हैं ये पुस्तकों को बिक्री करने से वो पुस्तकों को पढ़ेगा और पढ़ करके उसी भक्ति के प्रति कुछ भावना आएगी तो फिर वैष्णव का आश्रम करेगा फिर गुरुकरण करेगा बहुत दूर से हम अभी चिंता करके ये सबको करें यही इसी का नाम प्रचार है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं हम यहाँ पर आए प्रचार कर क्या प्रचार कर क्या आपको दे रहे हैं डायरेक्ट भक्ति दे रहे हैं ये स्वरूप सिद्धा भक्ति। इसलिए जब भक्ति के विषय में स्वयं प्रतिष्ठित हो जाता है तो वो प्रचार कर सकता है सिद्धा भक्ति का। जो जानता ही नहीं है आप क्या प्रचार करेंगे वो क्या प्रचार करेगा जो जानता ही नहीं है कुछ किसको कहते हैं भक्ति किसको आरोप सिद्धा किसको सकाम भक्ति कहते हैं किसको निष्काम भक्ति कहते हैं किसको प्रेमा भक्ति कहते हैं भक्ति कहते हैं किसको वो क्या प्रचार करेंगे कहता है देखो तुमको संपूर्ण प्रेजेंट कर देंगे यदि तुमने 1,00,000 रुपए की पुस्तक बेच दी तो तुमको संपूर्ण उसको एक पद मार ज्यादा इसमें भक्ति का क्या था कुछ दिनों के बाद में वो मठ वहां से कुछ रुपया चोरी कर दिया कुछ दिया और उसके बाद में टेम्पल वालों ने उसको पकड़ लिया अपमानित किया और फिर वो चला अब भक्ति कहाँ थी।
लेकिन प्रचार के लिए प्रभुपाद जी ने इसको स्वीकार करवाए हैं
उनका उद्देश्य क्या था ये समझो ना भाई उनका उद्देश्य क्या था शुद्ध भक्ति के तरफ नहीं देखिए
लोगों में
भक्ति आयतों पर क्या कर सकते
तुम जानती हो कि नहीं तुम्हारे अंदर में है कि नहीं तो तुम प्रचार जो करने जा रही है क्या प्रचार करने जा रही तो कुछ बात की तुमको ज्ञान है कि नहीं तो तुम क्या करेंगे आप तो केवल ही कहेंगे जैसे प्रभुपाद जी ने यह पुस्तक लिखा आपको इसका तुम क्या कहेंगे या यही कह सकते हैं संसार का सुख जो है मेटेरियल सुख जो है वो क्षण इसे तुम्हारा सुख यही तो कहेंगे इसका तृप्त और क्या कहेंगे। इसलिए हमारे हरिदास ठाकुर जी यदि प्रचार में उतरेंगे तो वो कुछ दे सकते हैं। स्वामी जी ने जो दिया स्वामी की प्रचार करने के लिए अमेरिका में और इधर से गए। वो चीजें अब वैसी श्रद्धा किसी की इन लोगों के प्रति है क्यों नहीं है? है क्यों नहीं? उन्होंने तो जैसे तैसे व्यक्ति में जाते हैं, सभी लोग अपना घर का वैभव छोड़ करके करता रहे करते हरे कृष्ण के पीछे पीछे पड़ने लगे। और अब ये कराएं तो वैसा इन लोगों की जैसे अपने गुरु में निष्ठा है, इनके शिष्यों की इनके प्रति ऐसी निष्ठा है
नहीं।
उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उन लोगों के शिष्यों की हमारे प्रति में जैसी श्रद्धा है उनके प्रति वैसी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात में? ऐसे जिसके पास कुछ तत्व ज्ञान भक्ति का कुछ अनुभव, वो लोग प्रचार करेंगे कुछ दूसरा प्रचार करेंगे भक्ति का। हम लोग अधिक करते उनके बाणियों को जीना का उन दोनों के प्रचार में कर पाएंगे। इसे वो जो प्रचार है वो कर्म का अंग अभी है, भक्ति का अंग नहीं है, किंतु उद्देश्य के जो है उसके लिए तो ये इसको भी भक्ति का ही प्रचार है। ज्ञान दे चाहे न दे, ये बदलाएगा ये संसारी सुख सुख नहीं है, तुम चलो तो थोड़ा सा वहाँ ये जिसको जरा पढ़ना तो पढ़ा, अभी ये बातें तो ठीक है।
जैसे हम लोग जाप करवाते हैं लोगों में, उनको इस तरफ प्रेरणा देते हैं कि जाप करें, तो वो लोग ग्रहण करते हैं, मांस वगैरह छोड़ देते हैं, इस तरह का जो प्रचार किया जाता है
काम थोड़ा कुछ तो लाभ होगा, किंतु ये अभी जो है आरोप सिद्धा सिद्धाभक्ति में प्रतिष्ठित करना करना।
तो इसमें जो ऐसे कार्य करने से उस व्यक्ति के अंदर शुद्ध भक्ति का धीरे धीरे संचार होगा,
यदि वो संपर्क में आ गया वैसे व्यक्ति का, और यदि नहीं आया ना तो इसी को प्रचार को जो अभी कर रहे हैं इसी को सब कुछ समझ लेगा, बस यहीं तक समाप्त हो जाएगा।
प्रचार में कई बार अपना अभिमान भाव आ जाता है और
उनको नहीं आता है, जिनको वो तो भगवान की दया को वितरण करते हैं। नारद जी में ऐसा अभिमान आएगा? जब हमें लोगों में अभिमान नहीं आता है तो उन लोगों में क्या आएगा? क्योंकि जो कुछ नहीं जानते हैं, जो फेम अर्थ और ये सब के लिए जरूरत है उनमें आ जाता है। भक्ति ऐसी चीज है, ये थोड़ी सी भी होगी तो उसको नम्र बनाएगी, अभिमान को भी दूर बना देगी। विद्या ददाति विनयम् है होता है। वैसे भक्ति होनी चाहिए विनम्रता है, संसार के प्रति विनम्रता से अनाशक्ति और भगवत तत्व की उपलब्धि होती है एक साथ। भक्ति परेशान भवो विरक्ति अनंत व्यक्ति होगी, यदि वो एक साथ में सबसे ग्रास भोजन ग्रहण करने से शक्ति संचलित होना और उतने अंत में दुख का दूर होना और तृप्ति तीनों एक साथ में ऐसे भक्ति के साथ सब सिद्धा भक्ति इस प्रकार की भी आवश्यकता है। उनको मोह दिया जाता है, गुरु वचनों का संग्रह फिर उनके समय से प्रभाव करती है। यदि वो उद्देश्य है तो वो भी उद्देश्य सुधार करती है। जैसे हमको यज्ञ करना है, मैंने कहा जाए ईटा लाओ, किसने ईट लाई, उसका यज्ञ हो गया? ईट लाना ही यज्ञ है नहीं है? अच्छा ईट नहीं लाता है तो यज्ञ होगा? ठीक, अब ईट लाने की क्रिया तो जो ईट ला रहा है एक मजदूर ला रहा है वो यज्ञ में सहायता दे रहा है कि नहीं, तो उसको यज्ञ करना है, ये यज्ञ करना है, यज्ञ में सम्मिलित हुआ है ये तो असल यज्ञ से पड़ोगे। ऐसे ही ये सकती है, ये यदि हम निम्न अधिकारी को कहेंगे तो भक्ति से दूर हो जाएगा, इसे उसको मत कहो, उसको कह देते हैं पूरा भक्ति कर रहे हैं, उसको कह देते हैं प्रचार कर रहे हो, तुम दूसरा कर रहे हो, तुम्हारा ये भजन हो रहा है, भले वो माला में छिका दिन भर उसी काम में लगा दिया, भजन तुम कर रहे हो तुम तो बड़ी प्रसन्नता देते हो, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, वो जो जो कुछ कर रहा है वो पिता भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा,
उसके शुक्र की बनती चली जाएंगी करते जाएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रचार के साथ अपने हृदय में भगवान के प्रति जो आवेश भक्ति है उसको पनपाने की ओर ज्यादा अवलोकन करना चाहिए,
नहीं तो फिर यह कुछ दिनों में बाद में उड़ जाएगी।
भक्ति का चित्त रहे, वहाँ लोभ पैदा हो रहा है कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा, इस चीज़ का भी ध्यान हमेशा देते रहना चाहिए। एक आदमी सवेरे स्नान किया, स्नान करते एक घंटे तक दर्पण में देखता हुआ सीधा सीधा करते 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 बनाते बिगाड़ते संगीत हो गया एक घंटा, फिर देखा जैसे हमारी माला ठीक है, फिर देखा जैसे हमारे देव देव बरसे जो हैं वो ठीक हैं कि मैले हैं कि कैसे हैं, उसको पहले करके अच्छी तरह से देख खा करके और सब से उसको पहन दिया, पहन करके तुलसी जी को प्रणाम कर दिया, और ऐसे का प्रक्रिया नहीं उसका सारा दिन लग गया। अब उसका जो भजन हुआ कि नहीं हुआ क्या हुआ, मतलब अब जो मंत्र था जिसके लिए हमने मनोनिवेश के लिए किया था उसने किया नहीं, जिसने तिलक नहीं किया और कुछ नहीं देखा, बैठा मनोनिवेश कर दिया भगवान ने और इन मंत्रों को एकदम निरीक्ष होकर करने लगता करने लगे। अब अगला उसकी प्रक्रिया और उसकी प्रक्रिया में सुनना मैं कैसे भगत किया है, अरे अरे ये तिलक नहीं किया बचना ही नहीं, ओ इसे तेरा तिलक थोड़ा सा कर दिया, ये तिलक थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, उसका सुधार ही करो, इससे दूसरा नहीं हो लग गया है ना, हर कोई नहीं होगा ना ही नहीं क्या कर रहा है। अब ये जो भजन करना है ये समझेंगे हम लोग, नहीं समझेंगे भजन कराएंगे व्यक्तियों को, भीतर व्यक्तियों को अंतर व्यक्तियों को देखा और स्थूल व्यक्ति भावना ये भीतर देखेंगे, एक आधे दिन भरने का कितना का प्रयास हो रहा है ऐसा का जगत माता पिता नहीं समझेंगे, अरे ये तो भी खतरा है और जो बात है फट बन जाएगा जब कई साल तो वो कैसे अच्छा ये जो हम जा सकते हैं और भगवान से प्रेम प्राप्त करने या अपने को खिलाड़ी बनाने के लिए जाते जाता।